ये है संयुक्त राष्ट्र रेडियो और मैं हूं महबूब खान साप्ताहिक समाचार परिक्रमा के साथ। 22 जून 2018 के इस प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे, मानवाधिकार परिषद से अमरीकी सदस्यता वापसी के बाद नए सदस्य की खोज तेज। अमरीकी सीमा नियमों की वजह से हजारों नन्हे बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने माता पिता से। छोटे हथियारों से होने वाली हिंसा से हर साल 5 लाख लोग चढ़ जाते हैं मौत की भेंट। कुष्ठ रोग पीड़ितों के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह के माहौल को खत्म करने का मिशन। और इराक के मोसूल में तबाही और बर्बादी के ढेर में जिंदगी के निशान तलाश करने की कोशिश। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस लेने पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई है। जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि अमेरिका द्वारा इस संस्था से पीछे हटने के बाद खाली हुए स्थान को तुरंत भरने के लिए किसी सदस्य देश का चयन जल्द से जल्द किया जाएगा। ध्यान दिला दें कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की एम्बेसडर यानी राजदूत निकी हेली ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने की घोषणा की थी। अमेरिका साल 2017 के दौरान भी इस संस्था से अपनी सदस्यता खत्म करने की चेतावनी देता रहा है। अमेरिका आरोप लगाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह रखती है, यानी इसराइल के साथ भेदभाव वाला रवैया अपनाती है और इसमें व्यापक सुधारों की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष वोइस्लाव सुश ने अमरीकी घोषणा के कुछ ही घंटों बाद कहा कि अमरीका द्वारा अपनी सदस्यता वापस लेने की आधिकारिक सूचना मिलने के बाद नए सदस्य के चयन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली करती है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश का चुनाव बहुमत की प्रक्रिया से होता है। मानवाधिकार परिषद में इस समय 47 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि वो ये चुनावी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए महासभा के अध्यक्ष मिरोस्लाव लेत्साक के साथ जल्द से जल्द संपर्क कायम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अमेरिका द्वारा अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में बनाए गए सख्त नियमों और नीतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इन नियमों और नीतियों की वजह से हजारों प्रवासी बच्चों को उनके माता पिता और परिवारों से अलग कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राद अल हुसैन ने कहा है कि इन अमरीकी सख्त नियमों और नीतियों की वजह से पिछले करीब 6 सप्ताहों के दौरान लगभग 2000 बच्चों को उनके माता पिता से जबरन अलग कर दिया गया। गौरतलब है कि जायद राद अल हुसैन का 4 साल का कार्यकाल इसी साल अगस्त में पूरा हो रहा है और मानवाधिकार परिषद को ये उनका आखिरी संबोधन था। उनका कहना था कि इस ख्याल से ही दिल और आत्मा दहल जाते हैं कि कोई देश छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके बच्चों के साथ इस तरह का क्रूर बर्ताव भी कर सकता है। ये बिल्कुल सोच के बाहर है और स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने अमेरिका सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि उसे इन सख्त सीमा नियमों और नीतियों में तुरंत बदलाव करना चाहिए और बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने वाली संधियों और समझौतों को मान्यता और स्वीकार्यता देनी चाहिए। दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख लोगों की जिंदगी ऐसी हिंसा की वजह से मौत की भेंट चढ़ जाती है जो छोटे हथियारों की वजह से अंजाम दी जाती है। छोटे हथियारों में पिस्तौल, बंदूक, कट्टे और धारदार हथियार शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी प्रमुख मारिया लुइजा रिबेरो वाइटी ने सोमवार को ये बात कही। मारिया छोटे हथियारों से छुटकारा पाने के लिए आयोजित किए गए 3रे समीक्षा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस की तरफ से बोल रही थीं। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। चीफ डी कैबिनेट मारिया लुइजा रिबेरो वाइटी का कहना था कि यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर भी अक्सर गैर कानूनी छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 2017 के दौरान 56 शांति सैनिकों की मौत हिंसक हमलों में हो गई थी, जो कि पिछले 2 दशकों के दौरान किसी एक साल में मारे गए शांति सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटे हथियारों के निर्माण और इस्तेमाल को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए तमाम उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों के दायरे से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने की सख्त जरूरत है। मारिया का ये भी कहना था कि इस रणनीति और कार्यक्रम के तहत लड़ाई छोड़कर सामान्य जिंदगी जीने का फैसला करने वाले पूर्व लड़ाकों को शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी रोजी रोटी चलाने के अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना भी शामिल होना चाहिए। इस कार्यक्रम और रणनीति में स्थानीय सरकारों और पुलिस की भी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका बहुत जरूरी है। साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों, सामुदायिक कार्यक्रमों और स्थानीय कारोबारी संगठनों का सक्रिय योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में अब भी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को तरह तरह के भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, और ये भेदभाव सिर्फ कुछ लोगों के स्तर पर ही नहीं बल्कि संस्थानों के स्तर पर भी होता है। यानी कुष्ठ रोगियों को स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों वगैरह में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के खिलाफ इस भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रह वाले माहौल को खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान पर स्पेशल रिपोर्टर एलिस क्रूज ने ये चेतावनी भरी बात कही। उनका कहना था कि समाजों, समुदायों और कामकाज के स्थानों पर इस तरह के माहौल ने इस बीमारी से छुटकारा पाने के प्रयासों में ठोस कामयाबी के रास्ते में रोड़ा अटका रखा है। एलिस क्रूज ने ये चेतावनी जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के पटल पर जारी की। उन्होंने 47 सदस्यों वाली इस परिषद के सामने रखी इस जानकारी में विस्तार से बताया कि कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को किस तरह से शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और हिंसा का शिकार बनाया जाता है। एलिस क्रूज का कहना था कि अब भी 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्हें अपने यहाँ कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव की अनदेखी करने वाले कानूनों को बदलना या खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाना बाकी है। मानवाधिकार परिषद के सामने रखी रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक देशों में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अक्सर जेलों में बंद कर दिया जाता है, उन्हें संक्रमण मुक्त करने की कोशिश की जाती है, यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सामान्य तौर पर हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है। विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने के अथक प्रयास जारी हैं, फिर भी साल 2016 में दुनिया भर में 2.5 लाख नए मामले दर्ज किए गए। ध्यान देने की बात है कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, जिसके लिए दवाएं भी मौजूद हैं। कुष्ठ रोग की जानकारी अगर बहुत शुरुआती अवस्था में मिल जाए तो इस बीमारी से होने वाले शारीरिक नुकसानों को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी सद्भावना दूत और हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने इराक के पश्चिमी मोसूल इलाके का दौरा करने के बाद कहा है कि वहां के हालात इतने खराब हैं कि उन्होंने 17 साल के दौरान ऐसी तबाही नहीं देखी है। एंजेलिना जोली पिछले करीब 17 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र के लिए सद्भावना दूत के तौर पर काम कर रही हैं। पश्चिमी मोसूल इलाके को साल 2017 की गर्मियों में 3 साल के कब्जे के बाद आइसिल या दाएश के चंगुल से आज़ाद कराया गया था। मोसूल को इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। एंजेलिना जोली का कहना था कि इन लोगों का सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया है। इसके अलावा ये लोग मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से जिस सदमे से गुजर रहे हैं उसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है, फिर भी जीने का उनका हौसला कमज़ोर नहीं पड़ा है। पश्चिमी मोसूल के इन लोगों के हालात दिल दहना देने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हैवानियत वाली हिंसा और क्रूरता का सामना किया है, और उनके पास जिंदगी को फिर से शुरू करने और संवारने के लिए बहुत कम संसाधन बचे हैं, जबकि किसी वक्त उनके हालात बहुत खुशहाल और समृद्ध थे। एंजेलिना जोली ईद के दूसरे दिन मोसूल पहुंची थी। ध्यान रहे कि ईद मुसलमानों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो रमज़ान महीने के खत्म होने के बाद मनाया जाता है। एंजेलिना जोली ने अनेक इलाकों का दौरा करके तबाही और बर्बादी का जायजा लिया। बहुत सारी इमारतें बमबारी में ध्वस्त हो गई हैं। उन्होंने कुछ ऐसे परिवारों से भी मुलाकात की जो इस तबाही के बाद भी पश्चिमी मोसूल शहर में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एंजेलिना जोली ने दुनिया भर से अपील की कि वो मोसूल के लोगों की इन तकलीफों को ना भूलें और उनके संघर्ष में उनकी मदद करने की कोशिश करें। तो ये थी साप्ताहिक समाचार परिक्रमा संयुक्त राष्ट्र रेडियो से। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।